Iran Radio Podcast.
روزویل اسٹریٹ پوڈکاسٹ کا یہ ساتواں ایپیسوڈ ہے. ایران ریڈیو سے میں ہوں سید میثم عباس. اگر آپ دوسرے دلچسپ وشوں پر بھی پوڈکاسٹ سننا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ iranradio.ir/hi پر وزٹ کر سکتے ہیں. شاہ کو امریکہ میں پرویش دلانے کی کوششوں کے دوران کیسنجر اور راکفیلر شاہ کو شرن دلانے کے لیے کئی دیشوں سے بات چیت کر رہے تھے، لیکن محمد رضا پہلوی کو سویکار کرنے پر آنے والا خرچ اتنا زیادہ تھا کہ بہت کم سرکاریں اس کے لیے تیار تھیں. آخرکار کیسنجر کے دوست میکسیکو کے راشٹرپتی جوز لوپیس پورٹیلو نے شاہ کی سمرتھک لابی کے پرستاؤ کو سویکار کر دیا. حالانکہ میکسیکو کے ودیش منتری اس کے خلاف تھے اور ان کا ماننا تھا کہ محمد رضا پہلوی کو شرن دینے میں میکسیکو کو امریکہ کی مدد نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ کیسنجر نے اپنے پربھاؤ سے پورٹیلو کو اپنے منتری کی رائے کے خلاف پورو ایرانی شاہی پریوار کو ویزا جاری کرنے کے لیے راضی کر لیا. اس طرح 10 جون 1979 کو محمد رضا پہلوی اور ان کے ساتھی میکسیکو کے کوئرنواکا پہنچے. اکتوبر 1979 کی شروعات میں الفا پروجیکٹ کے ادھیکاریوں نے اپنا تروپ کا پتہ چل دیا، یعنی شاہ کی بیماری. کارٹر کے چیف آف اسٹاف ولیم ہیملٹن جارڈن نے لکھا ہے کہ راکفیلر کے ایک قریبی سہیوگی جوزف ورنر ریڈ جونیئر نے سب سے پہلے اس مدعے کو اٹھایا تھا. 28 ستمبر 1979 کو ریڈ نے ودیش وبھاگ کے راجنیتی کور سچیو ڈیوڈ نیوزم کو فون کیا اور بتایا کہ شاہ گمبھیر روپ سے بیمار ہیں اور انہیں امریکہ میں علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے. محمد رضا پہلوی کی بیماری ایک گپت معاملہ تھا جس کی جانکاری دربار میں کچھ چنندہ لوگوں کو ہی تھی. اپریل 1974 میں درباری چکتسک ڈاکٹر عبد الکریم ایادی شاہ کی بڑھی ہوئی اسپلین کو لے کر چنتت ہو گئی اور انہوں نے دربار کے منتری اسد اللہ عالم سے پیرس وشودالیہ کے رودھیر روگ وشیشگ پروفیسر جین برنارڈے کو آمنترت کرنے کا انوروھ کیا. برنارڈ اور کئی انیہ پروفیسر ایران آئے اور شاہ کے بون میرو اور بلڈ کے نمونے لیے. ٹیسٹ سے پتا چلا کہ شاہ کو ایک پرکار کا لیوکیمیا تھا جس کے لیے لمبے اپچار کی ضرورت تھی. انہوں نے کینسر کی بات درباریوں اور یہاں تک کہ سوئم شاہ سے بھی چھپا لی. 1977 میں فرح دیبا کو اپنے پتی کی بیماری کے بارے میں پتا چلا، لیکن شاہ کو کرانتی تک ان کی استھتی کے بارے میں کوئی سٹیک جانکاری نہیں تھی. اکتوبر 1979 تک شاہ کی بیماری کا راز فاش ہو چکا تھا اور واشنگٹن کے ادھیکاریوں کو ان کے میڈیکل ریکارڈ کی جانکاری تھی. اصلی سوال یہ تھا کہ کیا صرف امریکی اسپتالوں میں ہی شاہ کا علاج ہو سکتا ہے. امریکی ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شاہ کا علاج نیو یارک میں کروایا جانا چاہیے، حالانکہ میکسیکو یا فرانس میں بھی ایسی ہی سویدھائیں اپلبدھ تھیں. حالانکہ شاہ کی گمبھیر بیماری اور ان کی جلد ہی موت کی سمبھاونا نے سمیکرن بدل دیا. واشنگٹن کے راجنیتک سموہ کے سدسیہ جن میں سائرس وینس بھی شامل تھے دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گئے. 19 اکتوبر 1979 کو وائٹ ہاؤس کی ودیش نیتی کی ایک بریفنگ میں وینس نے کہا کہ ودیش منترالے کے چکتسا ندیشک کی رائے میں محمد رضا پہلوی کا علاج امریکہ میں کیا جانا چاہیے. اس کے پریناموں سے چنتت کارٹر نے اپنے سلاحکاروں سے پوچھا، اگر وہ ہمارے دوتاواس پر حملہ کریں اور ہمارے لوگوں کو بندک بنا لیں تو آپ کیا صلاح دیں گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. کارٹر نے چپی توڑتے ہوئے کہا، اس دن ہم سب یہاں بیٹھے ہوں گے اور ہمارے چہروں کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. آخرکار 21 اکتوبر 1979 کو کاریواہ ودیش منتری وارن کرسٹوفر نے میکسیکو سٹی استھت امریکی دوتاواس کو ایک ٹیلیگرام بھیج کر شاہ کو پرویش کی انومتی دے دی. کرسٹوفر نے زور دے کر کہا کہ یہ یاترا گپت ہوگی اور راکفیلر سموہ اس کا پرمند کرے گا. 22 अक्टूबर 1979 को मोहम्मद रजा और फराह पहलवी को डेविड न्यूजोम के फेक नाम से न्यूयॉर्क के कार्नेल मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। रॉकफेलर ने लिखा है कि मोहम्मद रजा पहलवी के फेक नाम में एक ई ज्यादा थी और उसे डेविड न्यूजोम लिखा जाता था। शाह के अमेरिका में प्रवेश ने कई सवाल खड़े किए। महीनों के प्रतिरोध के बाद कार्टर ने अपना विचार क्यों बदल दिया? क्या मानवतावाद का सिद्धांत उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि वो तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास को जोखिम में डालने को तैयार हो गए, या राजनीतिक और चुनावी विचार निर्णायक थे? इन सवालों के जवाब अमेरिका के घरेलू समीकरणों में खोजने होंगे। अक्टूबर 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में सिर्फ एक साल बचा था। कार्टर को रिपब्लिकन और यहाँ तक के कुछ डेमोक्रेट्स की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा था, जिन्होंने उन पर ऊर्जा संकट, उच्च मुद्रास्फीति और अमेरिका के प्रमुख सहयोगी ईरान को खोने का आरोप लगाया था। राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ हैमिल्टन जॉर्डन ने चेतावनी दी, अगर शाह मैक्सिको में मर जाते हैं तो किसिंजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो कहेंगे कि आपने पहले शाह को गिराया और अब उन्हें मार डाला। कार्टर ने कहा, किसिंजर भाड़ में जाएं, मैं इस देश का राष्ट्रपति हूं। हेनरी किसिंजर ने शाह को स्वीकार करने और ईरानी क्रांति के साथ कठोरता से पेश आने का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा था, जो देश अपनी विदेश नीति में नैतिक पूर्णता चाहता है, वो ना तो पूर्णता प्राप्त करेगा और ना ही सुरक्षा। इस प्रकार राजनीतिक दबावों को नकारा नहीं जा सकता था। अमेरिका के बाहर शाह की संभावित मौत से कार्टर को प्रेस और प्रतिद्वंदियों के और भी तीखे हमलों का सामना करना पड़ सकता था और चुनाव जीतने की उनकी संभावना कमजोर पड़ सकती थी। परिणाम स्वरूप कार्टर का निर्णय हमदर्दी पर नहीं बल्कि हित पर आधारित था। हॉक्स और डोज के बीच का अंतर नैतिकता और हितों का टकराव नहीं था, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के बीच था। रॉकफेलर और कैसिंजर जैसे हॉक्स का मानना था कि शाह को स्वीकार करने से अनवर सादात और किंग हसन जैसे सहयोगियों का विश्वास बना रहेगा। वेंस और क्रिस्टोफर जैसे डोव्स ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा रिपोर्टों को प्राथमिकता दी थी। अमेरिकी और मैक्सिकन अधिकारियों की शाह की यात्रा को खुफिया रखने की कोशिश नाकाम हो गई। 23 अक्टूबर 1979 को फ्रांस प्रेस ने मैक्सिको सिटी के सूत्रों के हवाले से खबर दे दी कि शाह चिकित्सा जांच के लिए न्यूयॉर्क गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता विलियम होर्डिंग कार्टर तृतीय को यह पुष्टि करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि शाह चिकित्सा उपचार के लिए एक अस्थायी पर्यटक वीजा पर अमेरिका आए हैं और उपचार पूरा करने के बाद देश छोड़ देंगे। लेकिन शाह के प्रवक्ता ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि उनकी हालत गंभीर नहीं है। इस खंडन को ईरान में अमेरिकी द्वेष के संकेत के रूप में देखा गया और इसने शाह को सत्ता में वापस लाने की साजिश के संदेह को बल दिया। 24 अक्टूबर 1979 को इमाम खुमैनी ने कायम शहर के मेयर के साथ एक बैठक में शाह की यात्रा का विरोध करते हुए कहा, अगर वो मर गए तो ईरानी राष्ट्र के धन का क्या होगा। शाह की अमेरिका यात्रा को लेकर जनता का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती पूर्व शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थे। विभिन्न अमेरिकी शहरों, खासकर वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में शाह की शरण के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हुए। पहला शाह विरोधी प्रदर्शन 24 अक्टूबर 1979 को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल के सामने हुआ। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 200 लोग अस्पताल के सामने इकट्ठा हुए और शाह मुर्दाबाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और सीआईए मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। उन्होंने मोहम्मद रजा पहलवी को अमेरिका से निष्कासित करने की मांग की। वॉशिंगटन स्थित ईरानी दूतावास ने भी शाह के अमेरिका में अपने प्रवास के संभावित विस्तार के विरोध में अपना काम बंद कर दिया। सबसे प्रमुख विरोध प्रदर्शनों में एक 4 नवंबर 1979 को हुआ, जब अमेरिकी और कनाडाई मुस्लिम छात्र संघ के सदस्य 7 ईरानी छात्र न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के शीर्ष पर चढ़ गए, मूर्ति के ऊपर खुद को जंजीरों से जकड़ लिया और शाह पर मुकदमा चलाने का आह्वान करते हुए एक बैनर लटका दिया ताकि न्यूयॉर्क वासियों के कानों तक ईरान के अपदस्थ शाह पर मुकदमे और सजा की बात पहुंचाई जा सके। इस घटना के कारण पर्यटकों को बाहर निकाला गया और स्थल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने उन्हें 3 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। उसी समय लगभग 100 ईरानी प्रदर्शनकारी मैनहट्टन की सड़कों पर शाह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार उन्होंने शाह को लाखों ईरानियों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। इस सार्वजनिक प्रतिक्रिया के सामने कुछ लोगों ने अपदस्थ शाह का समर्थन करने के लिए संघर्ष किया। उनका यह कदम स्पष्ट रूप से राज्य के कानून का उल्लंघन कर रहा था। 5 नवंबर को जावेद शाह लिखे बैनर वाला एक सिंगल इंजन विमान न्यूयॉर्क के एक अस्पताल के ऊपर से उड़ा। 20 मिनट बाद न्यूयॉर्क पुलिस के हेलीकॉप्टर ने अपराधी पायलट को गिरफ्तार कर लिया। उसने दावा किया कि उसने ये काम $100 के लिए किया था और उसे ये आदेश देने वाले की जानकारी नहीं थी। शाह के अमेरिका पहुंचने से ईरान का राजनयिक तंत्र असमंजस में पड़ गया। ईरान की 2 मांगे थी, शाह का एक अपराधी के रूप में प्रत्यार्पण और उनकी बीमारी की पुष्टि के लिए ईरानी डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच। 30 अक्टूबर 1979 को वाशिंगटन में ईरानी राजदूत अली असगर आगा ने डेविड न्यूज़ाम से मुलाकात की और शाह और फरादीबा के प्रत्यर्पण की मांग की। न्यूज़ाम ने जवाब दिया कि ईरान और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के अभाव के कारण ये अनुरोध असंभव है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ अमेरिकी अदालतें ही किसी व्यक्ति के निर्वासन की समीक्षा कर सकती हैं। अंत में उन्होंने अपनी सरकार और शाह के बीच मित्रता पर जोर दिया। चिकित्सा परीक्षण के संबंध में अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री इब्राहिम यजदी ने शाह के मामले की समीक्षा के लिए 2 ईरानी डॉक्टरों डॉक्टर मोहम्मद मोतमेदी और डॉक्टर ईरज फजल को पेश किया। साइरस मेंस ने कहा कि न्यूयॉर्क अस्पताल ईरानी डॉक्टरों को शाह की सीधे जांच की अनुमति नहीं देगा, लेकिन वे अमेरिकी डॉक्टरों से मिल सकते हैं और शाह का चिकित्सा रिकॉर्ड देख सकते हैं। वेंस ने एक टेलीग्राम में और भी स्पष्ट रूप से कहा, हम ईरानी डॉक्टरों द्वारा शाह की जांच पर विचार तक नहीं करेंगे जब तक कि शाह स्वयं या उनके परिवार द्वारा ऐसा अनुरोध न किया जाए। ईरान और दुनिया भर में शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। 1 नवंबर 1979 को धर्मगुरुओं की संघर्ष संस्था ने कि जिसका गठन ईरान में इस्लामी क्रांति की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए हुआ था, घोषणा कर दी कि ईद उल अजहा की नमाज आयतुल्ला हुसैन अली मुंतजरी खजाने टर्मिनल में अदा करेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी ने घोषणा की कि वो नमाज के बाद हत्यारे शाह को शरण देने के खिलाफ अमेरिका विरोधी मार्च निकालेगी। अपने उपदेशों में आयतुल्ला मुंतजरी ने अमेरिकी नीतियों की निंदा करते हुए कहा, हम ईरान के मुस्लिम राष्ट्र साम्राज्यवाद पूर्व और पश्चिम और अमेरिका और ज़ायोनिज्म के अपराधों की निंदा करते हैं। हम अपदस्थ शाह की मेज़बानी करने के अमेरिका के इस अपराध की कड़ी निंदा करते हैं। नमाज के बाद एक अमेरिका विरोधी प्रस्ताव पढ़ा गया। जिस समय ईद उल अजहा की नमाज हो रही थी उसी समय रूजवेल्ट एवेन्यू स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने लगभग 3,500 लोगों की भीड़ जमा हो गई। दूतावास के प्रभारी ब्रूस लैंजिन के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कार्टर मुर्दाबाद और जासूसों का अड्डा अमेरिकी दूतावास बंद होना चाहिए जैसे नारे लगाए। करीब 11 बजे अमेरिकी झंडे को आग के हवाले कर दिया गया। लैंजिन ने बताया कि एक अमेरिकी कर्मचारी ने दूतावास की दीवार से 2 पोस्टर फाड़े और वो उन्हें अंदर ले गया। एक पोस्टर पर इमाम खुमैनी की तस्वीर थी और दूसरे पर लिखा था, हमारा मुख्य दुश्मन अमेरिका है। लैंजिन ने पुष्टि की कि इससे प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो दूतावास पर हमला कर देंगे। पुलिस सुरक्षा में दोपहर 3 बजे प्रदर्शन समाप्त हुआ। अंत में अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने दूतावास की सुरक्षा में सहयोग के लिए ईरानी सरकार का शुक्रिया अदा किया। उसी दिन यानी 1 नवंबर को इमाम खुमैनी ने 4 नवंबर 1978 को तेहरान विश्वविद्यालय पर पहलवी शासन के हमले की पहली बरसी पर एक संदेश जारी किया। उन्होंने मौलवियों, छात्रों और विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ पूरी ताकत से हमले तेज कर दें और अमेरिका को इस अपराधी अपदस्थ शाह को हवाले करने के लिए मजबूर करें। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित छात्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी इस संदेश ने विरोध प्रदर्शनों में नई जान फूंक दी। इस तनाव के बीच एक चौंकाने वाली खबर आई। ईरान की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मेहदी बाजरगान ने अल्जीरिया में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रेजिंस्की से मुलाकात की। अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम की 25वीं वर्षगांठ के दौरान हुई इस मुलाकात ने ईरान में अनिश्चितता और गुस्से की लहर पैदा कर दी। प्रधानमंत्री के रूप में ये बाजरगान की पहली विदेश यात्रा थी और ऐसे समय में किसी अमेरिकी अधिकारी से उनकी मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला सवाल इस मुलाकात की जरूरत के बारे में था। ईरान और अमेरिका के बीच गहरे संकट के बीच इस बातचीत का क्या औचित्य था? क्या बाजरगान ईरान के आंतरिक तनाव का इस्तेमाल अमेरिका से रियायतें हासिल करने के लिए करना चाहते थे, या अंतरिम सरकार असमान संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि कई लोगों ने अनुमान लगाया था? दूसरा मुद्दा दोनों पक्षों के बीच असमानता का था। बाजरगान ने ब्रेजिंस्की से मुलाकात की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार थे। कूटनीतिक व्यवहार में इस असमानता को ईरान की कमजोर स्थिति के रूप में देखा गया। तीसरा मुद्दा मुलाकात का स्थान और समय था। स्वतंत्रता दिवस पर अल्जीरियाई राजधानी उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए एक प्रतीकात्मक स्थान और समय था, लेकिन ऐसे माहौल में ब्रेजिंस्की के साथ बाजरगान की मुलाकात ने ईरानी समाज को एक अंतर्निहित संदेश दिया कि अंतरिम सरकार क्रांतिकारी नेता की नीतियों और उपनिवेशवाद से लड़ने की जनता की इच्छा के अनुरूप नहीं है। ये मुलाकात ठीक उसी दिन हुई जिस दिन इमाम खुमैनी ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए संदेश जारी किया था, जिसने इस मुद्दे को और भी संवेदनशील बना दिया। इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी ने 12 नवंबर को एक आलोचनात्मक बयान जारी किया, जिसमें बाजरगान से 4 सवालों के जवाब मांगे गए थे। पहला, क्या ये मुलाकात ईरानी जनता के क्रांतिकारी आंदोलन के अनुरूप है? दूसरा, अगर ऐसी बातचीत जरूरी थी तो ये उच्च राजनीतिक स्तर पर क्यों नहीं हुई, जिसका राजनीति में विशेष महत्व है? तीसरा, क्या यह दावा सच है कि उन्होंने ब्रेजिंस्की से ईरान के प्रति अमेरिकी रुख बदलने को कहा था? और चौथा, क्या इस मुलाकात की पूरी रिपोर्ट इमाम खुमैनी और क्रांति एवं समाज परिषद को उपलब्ध कराई जानी चाहिए? इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी के बयान के कुछ घंटों बाद छात्रों के एक समूह ने दुनिया भर के मीडिया का विशेष ध्यान तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर केंद्रित कर दिया।